एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
क्यों कोई आज भूला फिरे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आज फिर से आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरा ज्ञान और बुद्धि से भर दे, तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, कि हम तेरे वचनों को जान सके, समझ सके और तेरे राह में चलने सके। मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता, उनके मनों को खोल दे और तेरे वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा की अगुवाई दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सहस्राब्दी की शुरुआत में घटनाएं। ये हजार वर्ष का समय है जो यीशु मसीह का पहला आगमन और यीशु मसीह का दूसरा आगमन और फिर से अपने लोगों को लेकर नया यरूशलेम से आएगा, उसके बीच के 1000 साल का समय है जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सहस्राब्दी पहले और दूसरे पुनरुत्थान के बीच स्वर्ग में अपने पवित्र लोगों के साथ मसीह का 1000 साल का शासन है। संपूर्ण इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नरक की भयावहता के विषय में बढ़ चढ़कर बात की है, लोगों के डर से खेलकर उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के लिए लाने का प्रयत्न किया है, परंतु वे किस प्रकार के परमेश्वर का चित्रण करते हैं? परमेश्वर अंत में बुराई से कैसे छुटकारा पाएगा? शैतान का क्या होगा? पाप को अपना घिनौना सिर एक बार फिर खड़ा करने से क्या रोकेगा? एक न्यायी परमेश्वर प्रेममय कैसे हो सकता है? आज और आने वाले 2 दिन हम लोग इसी विषय में बातें और चर्चा करेंगे। सहस्राब्दी के दौरान 1000 साल की अवधि जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय कहता है, पृथ्वी पर शैतान के प्रभाव को प्रतिबंधित किया जाएगा और मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ राज्य करेगा। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:1-4। आज हम इस 1000 साल के शुरुआती समय के घटनाओं को देखेंगे। दूसरा आगमन होता है, प्रकाशित वाक्य 19:20 एक साथ हैं। इस अध्यायों के बीच कोई विराम नहीं है, वे मसीह के आगमन का वर्णन करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:11-21 एवं तुरंत सहस्राब्दी के साथ जारी रहते हैं। उनका क्रम यह संकेत देता है कि सहस्राब्दी तब शुरू होगी जब मसीह का आगमन होता है। प्रकाशित वाक्य उन 3 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक अजगर, एक पशु और एक झूठे भविष्यवक्ता के रूप में मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले उसके कार्य और उसके लोगों का विरोध करने के लिए संसार के राष्ट्रों को एकत्रित करती हैं। प्रकाशित वाक्य 16:13। जब पशु पृथ्वी के राजा और उनकी सेना मसीह के आगमन के समय उसके साथ युद्ध करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो पशु या झूठे भविष्यवक्ता नष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:19-20। आगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में सहस्राब्दी पर अध्याय शैतानी तिकड़ी के तीसरे सदस्य अजगर के भाग्य से संबंधित है। उसे बंदी बना लिया जाता है और अथाह कुंड में डाल दिया जाता है, जहां वह 1000 वर्षों तक रहता है। जैसा कि हमने पहले देखा है, यह मसीह के दूसरे आगमन के साथ होता है। जब इस संसार के राज्य नष्ट हो जाते हैं, तब परमेश्वर अपनी महिमा के राज्य को स्थापित करेगा, एक ऐसा राज्य जो सदा बना रहेगा। हम पढ़ते हैं दानियल 2:44 में, तब उसकी प्रजा अपना राज्य आरंभ करेगी। पहला पुनर्स्थान होता है, दूसरे आगमन पर पहला पुनर्स्थान होता है। धर्मी धन्य और पवित्र जी उठे हैं, क्योंकि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। कहता है प्रकाशित वाक्य 20:5-6, धर्मी लोग स्वर्ग ले लिए जाएंगे। मृत धर्मियों के पुनर्स्थान के पश्चात वे एवं जीवित बचे पवित्र लोग बादलों पर उठा लिए जाते हैं हवा में प्रभु से मिलने के लिए। 1 तिमोथियस 4:17। तब मसीह इस संसार को छोड़ने से ठीक पहले की गई प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यह प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने किया है, जिसे हम पढ़ते हैं, जो लिखा है यूहन्ना 14:2-3 में। यीशु ने उस स्थान का वर्णन किया जहाँ वह अपने अनुयायियों को ले जाएगा, मेरे पिता का घर, जहाँ बहुत से रहने के स्थान है, यूहन्ना 14:2। यहाँ यीशु नए यरूशलेम को संदर्भित करता है, जो सहस्राब्दी के अंत तक इस पृथ्वी पर नहीं आता है। तब दूसरे आगमन पर जब धर्मी जन हवा में प्रभु से मिलते हैं, उनका गंतव्य स्थान स्वर्ग है, यह पृथ्वी नहीं जिसे उन्होंने अभी अभी छोड़ा है। मसीह इस समय पृथ्वी पर अपनी महिमा के राज्य की स्थापना नहीं करता है, वह सहस्राब्दी के अंत में ऐसा करता है। मसीह के शत्रुओं को मार डाला जाता है। मसीह ने अपने आगमन की तुलना जल प्रलय के समय जो हुआ और सदोम और अमोरा के विनाश से की। मत्ती 24:37-39, लूका 17:28-30। उसकी तुलना में दो बातें स्पष्ट हैं। पहली कि जो विनाश आया वह दुष्टों के लिए अचानक आया, और दूसरी जो आया वह विनाश था, जल प्रलय जो सब को बहा ले गया। मत्ती 24:39। सदोम पर बरसने वाली आग और गंधक ने सबको नाश कर दिया, लूकास 17:29, और मत्ती 13:38-40 को भी देखें। दूसरे आगमन पर मसीह अपनी सेनाओं के साथ सफेद घोड़े पर सवार स्वर्ग से उतरेगा, जिसका नाम है राजाओं का राजा व प्रभुओं का प्रभु, और संसार के विद्रोही राष्ट्रों पर प्रहार करेगा। पशु व झूठे भविष्यवक्ता के विनाश के पश्चात शैतान के शेष अनुयायी मर जाएंगे और कोई जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मारे गए थे, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। यह कहता है प्रकाशित वाक्य 19:21। इस दृश्य का वर्णन करते हुए शास्त्र ने कहा है, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। अब यशायाह 26:21 कहता है, पृथ्वी वीरान हो जाएगी क्योंकि धर्मी लोग प्रभु के साथ रहने के लिए स्वर्ग को चले जाते हैं और दुष्ट उसके प्रकट होने पर नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी मानव निवासियों के बिना एक समय के लिए वीरान हो जाती है। शास्त्र ऐसी स्थिति की ओर इशारा करता है। यिर्मयाह कहता है, मैंने पृथ्वी पर देखा वह सुनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। यिर्मयाह 4:23-25। यिर्मयाह द्वारा उत्पत्ति 1:2 में पाई गई शब्दावली का प्रयोग बेडोल और सुनसान इस बात का संकेत देता है कि पृथ्वी उसी प्रकार अव्यवस्थित हो जाएगी जिस प्रकार यह सृष्टि के आरंभ में थी। शैतान बांधा जाता है। इस समय होने वाली घटनाओं को इसराइलियों के निवास स्थान में प्रायश्चित के दिन अजाजेल के बकरे के संस्कार में दर्शाया गया था। प्रायश्चित के दिन महायाजक यहोवा के बकरे के प्रायश्चित लहू से पवित्र स्थान को शुद्ध करता था। इस प्रायश्चित के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही अजाजेल वह बकरा जो शैतान का प्रतीक था से जुड़ी रस्म आरंभ की जाती थी। उसके सिर पर अपने हाथों को रखते हुए महायाजक इसराइलों के सब अधर्म के कामों और उनके सब पापों को बकरे के सिर पर रखकर अंगीकार करता था। हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 16:21 में, और अजाजेल के बकरे को जंगल में भेजकर किसी निर्जन स्थान पर छुड़वा दिया जाता था। लेवी व्यवस्था 16:22। इसी प्रकार मसीह स्वर्गीय निवास स्थान में उसके द्वारा पूर्ण हुए प्रायश्चित बलिदान के लाभों को अपने लोगों को देने के लिए सेवा कर रहा है। अपनी वापसी पर वह उन्हें छुड़ाएगा और उन्हें अनंत जीवन देगा। जब वह छुटकारे और स्वर्गीय निवास स्थान को शुद्ध करने के कार्यों को पूरा कर लेगा तो वह अपने लोगों के पापों को शैतान बुराई के जन्मदाता और भड़काने वाले पर डाल देगा। यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि शैतान विश्वासियों के पापों का प्रायश्चित करता है। मसीह ने पूरी तरह से ऐसा किया है, परंतु शैतान को उन सभी पापों की जिम्मेदारी उठानी होगी जिसके कारण बचाए गए लोगों को पाप करना पड़ा और उस योग्य मनुष्य के समान जो बकरे को किसी निर्जन स्थान में छोड़ आता है, उसी प्रकार परमेश्वर शैतान को एक वीरान व निर्जन स्थान पर निर्वासित कर देगा। यहूना के सहस्राब्दी के दर्शन ने शैतान के निर्वासन को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। उसने देखा कि 1000 वर्ष के आरंभ में उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के जंजीर से बांध दिया व अथाह कुंड तक सीमित कर दिया। प्रकाशित वाक्य 20:2-3। यह प्रतीकात्मक रूप से शैतान के उत्पीड़न व छल की गतिविधियों का अस्थाई अंत प्रकट करता है कि वह 1000 वर्ष के पूरा होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:3 में, यहूना जिस शब्द का उपयोग करता है अथाह कुंड ग्रीक में एप्सोस इस समय पृथ्वी की स्थिति का उचित वर्णन करता है। 7 विपत्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त जो मसीह के आगमन से ठीक पहले आती हैं, देखिए प्रकाशित वाक्य 16:18-21, और दुष्टों के मृत शरीरों से ढकी हुई पृथ्वी पूरी तरह से उजड़ने का दृश्य है। इस धरती तक सीमित शैतान परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा बंधा हुआ है क्योंकि पृथ्वी किसी भी मानव प्राणी से रहित है। शैतान के पास लुभाने या सताने के लिए कोई नहीं है। वह इस मायने में बंधा हुआ है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, अपने धर्मी लोगों को ले जाएंगे, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा किया है, धर्मी लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और धर्मी मृत जो पहले मर चुके हैं, वे लोग यीशु मसीह के आवाज़ को सुन करके जी उठेंगे और उन्हें भी यीशु मसीह बादलों पर ले जाएगा, स्वर्गदूतों के संग उन्हें ले जाएगा। और तब यह पृथ्वी वीरान पड़ी रहेगी, शैतान अपना कुछ काम नहीं कर सकता है, लोगों को भरमा नहीं सकता है, इस तरह से शैतान बंधा हुआ रहेगा और हजार वर्ष का यह समय होगा और उस समय परमेश्वर के लोग स्वर्ग लिए जाएंगे, वहाँ पर वे लोग रहेंगे। यही बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय इसे हमें बतलाते हैं, समझाते हैं। तो हमें उस दिन के लिए तैयार होना है कि हम यीशु मसीह के संग स्वर्ग जा सके। आज ही वह समय है कि हम यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता जो स्वर्ग में हमारे लिए अपना बलिदान का कार्य का काम का प्रार्थना के सफलता का प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, उसको हमें अपनाना है, उसे स्वीकार करना है कि हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाए और जब वो आएगा हमें वह लेकर के जाएंगे। आइए हम उसके लिए तैयार हों, आइए हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवनों को उसके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के शक्ति से बदल लें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास फिर से आते हैं, हमें तेरे वचनों के द्वारा तूने आशीष दिया है, इस वचन से हमें भर दे और हमें तेरे रास्ता को अपनाने के लिए मदद कर, हम तेरे ज्योति में चले। प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान उसने हमारे लिए किया है उसको हम ग्रहण करें, स्वीकार करें और तेरे राज के लिए तैयार हों। हमारे मनों को तैयार कर पिता, कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के संग धर्मी लोगों को लेने आएगा, हम सब तैयार पाए जाने सके। इसलिए हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा आशीष दे, मेरे हरेक श्रोताओं को आशीष दे और आत्मा हम सबों को दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सोना ग्रहण कीजिए, आमीन।
सदा बोलिए न्यारा वचन, सदा बोलिए मधुर वचन, सदा बोलिए वचन दीपक पथ का उजियारा, वचन दीपक पथ का उजियारा, धन्य जो उस पथ हो होली, मधुर वचन सदा बोली। वचन को बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, प्यारा वचन सदा बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।